नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, एक किसान था, उसे भगवान से बड़ी शिकायत थी। उसने भगवान से शिकायत भरे लहजे में कहा कि भगवान, माफ कीजिएगा, आप भले भगवान हैं लेकिन आपको मौसम की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। भगवान ने कहा, वो कैसे? तो किसान ने कहा कि भगवान, आप कभी बहुत तेज धूप कर देते हो, कभी आंधी ले आते हो, कभी ओले बरसाने लगते हो, इससे फसल को कितना नुकसान होता है, आपको क्या पता है? आप किसान होते तो आपको पता चलता। तो भगवान ने कहा, तो तुम चाहते क्या हो? किसान ने कहा कि भगवान, ये जो आपने अपने पास मौसम विभाग रखा हुआ है, इसका हेड आप मुझे बना दो एक साल के लिए, फिर देखना कि मैं संसार में जितने भी खेती करने वाले किसान हैं उनके चेहरे पे कैसे मुस्कान ले आता हूँ। भगवान ने कहा, अच्छा, ऐसी बात है, तो ठीक है, आज से तुम मौसम विभाग के अध्यक्ष हुए, HOD हुए। अब किसान बड़ा खुश हुआ, उसने मौसम को पूरी तरह से मखमली कर दिया, एक रस मौसम कर दिया। गेहूं बोए थे उसने। अब वो जब फसल तय समय पे तैयार हुआ तो किसान अपने खेत पे पहुंचा, एक बाली तोड़ी। बाली तोड़ी तो देखा, बाली तो बहुत अच्छी लग रही है बाहर से, लेकिन उसके अंदर दाने नहीं है, अर्थात गेहूं नहीं है। उसे लगा शायद इस खेत में ऐसा होगा। दूसरे में गया, तीसरे में गया, चौथे में गया, पांचवे में गया। हर बाली देखने में बहुत खूबसूरत थी लेकिन अंदर गेहूं के दाने नहीं थे, बीज नहीं थे। रुआसा सा हो गया किसान। उसने ऊपर की तरफ देखा और कहा, भगवान, ये आपने क्या किया? तो भगवान ने कहा, भैया मैंने क्या किया, मैंने तो तुम्हें सारी जिम्मेवारी दे दी है, तुमने ही कहा था मुझे HOD बना दो। किसान ने कहा, प्रभु लेकिन ये हुआ कैसे? तब भगवान ने कहा कि देखो, प्रकृति का एक नियम है, पौधा हो या इंसान हो, जितना संघर्ष झेलता है, जितनी परिस्थितियां उसके सामने आती हैं, इन संघर्षों को झेल के ही वो मजबूत होता है। चूंकि तुमने इन्हें संघर्ष का मौका ही नहीं दिया, इसीलिए कमजोर रह गए और गेहूं के दाने नहीं आए। जब ओले पड़ते हैं, तेज धूप पड़ती है या मौसम खराब होता है, इन सभी संघर्षों को झेलते हुए पौधे भी मजबूत होते हैं और अंदर दाने भी आते हैं। मित्रों, ठीक यही बात हमारे साथ भी है। जीवन में जब कभी विपरीत परिस्थिति आती है, संघर्ष का सामना हमें करना पड़ता है, तो हमारे अंदर की भी शक्तियां जागृत होती हैं। हमें विश्वास होने लगता है कि सचमुच हम कितने शक्तिशाली हैं। अन्यथा यदि मौसम जो है हमेशा ही हरियाली से भरा हुआ हो तो शायद हम अपनी उन शक्तियों को न पहचान पाएं, शायद हम अच्छे और बुरे की पहचान न कर पाएं। इसलिए जीवन में जब कभी भी ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो अपनी एटीट्यूड को बहुत पॉजिटिव रखते हुए यदि हम आगे बढ़ें तो सचमुच शक्तियां जागृत होंगी और हम जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होंगे। आइए इसी सुंदर बात के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं, समाधान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
शुक्रिया
भ्राता जी। संघर्ष और विपरीत परिस्थिति के बारे में क्या कहेंगे?
बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि अगर वैरायटी ना हो तो दूसरे मौसम का सुख भी नहीं मिलेगा। और जैसे किसान की बात थी तो फसलों को गर्मी भी अवश्य चाहिए। कुछ फसलें ठंडी में पैदा होती हैं, कुछ बरसात की उपज होती हैं। अगर विभिन्न मौसम ना हो तो खेती होगी नहीं। इसलिए भगवान जैसे रचना रच रहा है, जो उसने सृष्टि के लॉज बनाए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। जब उन लॉज के विरुद्ध मनुष्य चला जाता है तो गड़बड़ होती है। और रही बात समस्याओं की, सचमुच जो व्यक्ति आज तक महान बने, जिन्होंने इतिहास बनाया है, उन्होंने संघर्ष को अवश्य पार किया है। चंद्रगुप्त मौर्य का देख लीजिए, बचपन से किस तरह संघर्ष ने उसको सम्राट बना दिया, पावरफुल बना दिया, निर्भीक बना दिया, बलिदान देने के लिए तैयार कर दिया। तो मनुष्य को इसी तरह जीवन के संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। आजकल कारण क्या हो गया है कि मनोस्थिति, मन की शक्तियां मनुष्य की काफी वीक पड़ गई हैं। वो ये जानता है कि समस्याओं से उसे घबराना नहीं चाहिए, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति इतनी कमजोर है कि कोई भी चीज आके उसे भयभीत कर देती है। वो परेशान हो जाता है, क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा। लेकिन अगर मन की शक्ति को बढ़ा दिया जाए तो सचमुच जीवन में आने वाले चैलेंजेज मनुष्य को बहुत शक्तिशाली बनाएंगे।
बिल्कुल। लेकिन भ्राता जी, एक मनुष्य की कामना रहती है कि पूरी तरह से मखमली मौसम हो, जीवन में कभी भी संघर्ष का सामना ना करना पड़े, तो क्या ये सोचना ठीक है या संघर्ष आने ये भी नेचुरल है?
मनुष्य की मेंटलिटी है कि वो मखमली मौसम में रहे, लेकिन उसके अंदर की ये भी वृत्ति है कि ये मखमली मौसम उसको आलसी और केयरलेस भी बना सकता है, जैसा कि बहुत लोगों के साथ हुआ है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा बहुत होने से आलसी हो गए, शराबी हो गए, बिल्कुल चरित्रहीन हो गए और जीवन उनका नरक में बन गया। होश आई तब जब खेल बिगड़ चुका था। इसलिए जीवन में उतार चढ़ाव मनुष्य को मजबूत करते हैं। बच्चा भी दो चार बार गिरता है ना तो मजबूत होता है, पहले रोता है फिर मजबूत हो जाता है, उसकी हड्डियां भी पावरफुल हो जाती हैं। इसलिए वास्तव में मखमली मौसम देवताओं के लिए तो ठीक है जहाँ कोई संघर्ष नहीं है, लेकिन मनुष्य के लिए जहाँ समस्याएं समस्याएं हैं, अनेकों के सामने तो समस्याओं का सागर लहराता रहता है, ऐसे में भी जो व्यक्ति अविचलित भाव से जीवन जीता है समस्याएं उसके लिए वरदान बन जाती
है। ऐसे में भ्राता जी, कल परसों भी हम लोग चर्चा करते आए हैं राजयोग के विषय में, राजयोग यहाँ किस प्रकार की भूमिका अदा कर सकता है, कैसे हमारी शक्तियों को जागृत कर सकता है या समस्याओं के प्रति जो एक दृष्टिकोण की बात है उसे सकारात्मक कर सकता है।
राजयोग के साथ राजयोगी को एक बहुत सुंदर ज्ञान भी मिलता है और वो लंबा चौड़ा ज्ञान है। उसमें इस विश्व को एक नाटक कहा गया है और इस संपूर्ण नाटक का ज्ञान मिलता है। तो देखिए, नाटक में कोई भी जो फिल्म बनाई जाएगी उसमें सीन हमेशा ही बदलते रहेंगे। एक ही सीन किसी फिल्म या ड्रामा में चले तो ड्रामा होगा ही नहीं। तो ऐसे ही जिसको संपूर्ण ज्ञान है वो ये जानता है आज ये परिस्थिति आई है, कल ये बदलने वाली है, अपनी मनोस्थिति बिल्कुल नहीं बिगाड़नी है, ये सब तो खेल है, कुछ ना कुछ इनके पीछे कल्याण छुपा हुआ है जो मुझे अब दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन बाद में अवश्य दिखाई देगा। और जब वो राजयोग का अभ्यास करता है तो उसका मन शक्तिशाली बनता है, उसकी बुद्धि डिवाइन होने लगती है, तो बुद्धि के निर्णय डिसीजंस परफेक्ट होने लगते हैं। और जब मनुष्य के निर्णय परफेक्ट हो जाएं तब बहुत सारी समस्याएं तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाती हैं। दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब मनुष्य योग अभ्यास करता है तो उसको परमात्मा इंट्यूशंस भी बहुत प्राप्त होते हैं, या ये कहें कि उसको परमात्मा सहयोग भी बहुत प्राप्त होता है। तो जैसे जैसे उसकी बुद्धि रिफाइन होगी तो किसी भी समस्या का समाधान सवेरे उठते उसकी बुद्धि में आने लगेगा, और जब वो अपने परमपिता से बातें करेगा तो कुछ उधर से आने लगेगा और समस्याएं बहुत जल्दी हल्की होकर समाप्त हो जाएंगी। इसलिए राजयोग एकमात्र ऐसा साधन है जो समस्याओं का समाधान करता है, मनुष्य को सशक्त बनाता है, उसकी इनर पावर्स को जागृत करता है। हमारे में से हजारों के लाखों के ये अनुभव हो गए हैं कि वो समस्याओं के समय में जैसे पहले परेशान होते थे अब परेशान नहीं होते, जैसे छोटी छोटी बातों में उन्हें पहले टेंशन या इरिटेशन होता था अब वो नहीं होता है। तो राजयोग से मनोस्थिति सुधरती है और ये एक बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है सृष्टि का, मनोस्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। यह श्रेष्ठ मनोस्थिति के सामने परिस्थितियां कुछ भी नहीं हैं, सब कुछ बदल जाता है।
बिल्कुल, ये बहुत सुंदर बात है भ्राता जी। मन यदि शक्तिशाली है तो समस्याएं कमजोर हो जाएंगी और सहज रूप से हम उसे पार कर लेंगे। भ्राता जी, कुछ हमारे पास SMS आए हुए हैं। समस्याएं तो हैं ही, संसार में सभी ने अपनी अपनी समस्याएं समाधान परिवार को प्रेषित करनी ही है। तो एक समस्या हमारे पास आई है, ये कहती है कि मैं स्वाति हूँ और पुणे से मैं लिख रही हूँ, समाधान कार्यक्रम देखती हूँ और रोज सुबह उठ करके मैं योग भी करती हूँ। मेरी समस्या ये है कि मेरे 9 साल का बेटा और मेरे पति दोनों ही हमेशा मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, उनके लिए मैं क्या करूं?
देखिए, मनुष्य जब बहुत सेंसिटिव होता है, जिस मनुष्य को ज्यादा सोचने की आदत होती है, वो छोटी-छोटी बातों में परेशान रहता है। और इस केस में ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे पर पूरा इफेक्ट उसके फादर का है, यानी बच्चा वेरी सेंसिटिव है अपने बाप के वाइब्रेशंस के लिए। तो जो बाप की मनोस्थिति होती है वो बच्चे की मनोस्थिति तुरंत बन जाती है, और माँ के लिए ये निश्चित रूप से चिंता का विषय रहेगा कि वो दोनों इरिटेट होते रहते हैं या परेशान होते रहते होंगे। तो इस मनोस्थिति से बदलने के लिए इनको, ये स्वयं अभ्यास अवश्य करती होगी, इनको 1 घंटा तो योगदान देना है दोनों को। योग एक ऐसी चीज है दूसरों के भी मन को सशक्त करता है, तो 1/2 घंटा बच्चे के लिए, 1/2 घंटा अपने पति के लिए, ये संकल्प करके कि ये आत्माएं हैं और इस योग की शक्ति से इनका मन बहुत पावरफुल हो, शांत हो, ऐसे संकल्प से इन्हें 1/2 घंटा दो टाइम भी कर सकते हैं सवेरे या शाम, अलग अलग राजयोग का अभ्यास करना चाहिए। दूसरी चीज, भोजन इनको पवित्र खिलाना है। बाप तो फिर भी चलो बड़ा है, 30 साल का तो होगा, लेकिन बच्चा अभी छोटा है, 9 ही साल का है, तो बच्चे की मनोस्थिति को अभी ठीक कर लेना बहुत कल्याणकारी होगा। क्योंकि अगर बचपन से ही बच्चे में इरिटेशन होता है, परेशान रहने की आदत पड़ती है, वो कुछ भी चीज सहन करने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं, तो बड़ा होकर उसको हर फील्ड में कठिनाई होगी। पढ़ाई में भी उसको बहुत कठिनाई होने लगेगी, क्योंकि 2-4 साल चलने वाला इरिटेशन या परेशानियां मनुष्य की ब्रेन की शक्तियों को छीन करने लगती हैं, तो बच्चे का ब्रेन बिल्कुल कमजोर पड़ने लगेगा। इसलिए एक तो भोजन बनाते हुए कम से कम 100 बार याद करेगी, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और लास्ट में संकल्प करे, इस पवित्र भोजन को खाने से इन दोनों का चित्त शांत हो जाए, वो सशक्त हो जाएं, वो समस्याओं को खेल मानने लगें, वो बहुत हल्के रहने लगें। बस ये संकल्प इन्हें रोज 2 बार अवश्य करना है भोजन पे, इससे बहुत फायदा होगा। लेकिन साथ में इन्हें बात भी करनी चाहिए दोनों से, बच्चे से भी प्यार से, अच्छे मूड में भी तो होते होंगे ना दोनों, जब वो अच्छे मूड में हो तो उनसे थोड़ी अच्छी बात करनी चाहिए। जैसे बच्चे को गोद में ले, प्यार से सामने बैठाए और बात करे, ये तो बहुत छोटी बात है, तुम्हें बहुत खुश रहना चाहिए, ये तो बातें आती हैं और चली जाती हैं। बीजी, अब तुम्हारा पढ़ाई का समय है, पढ़ाई का एंजॉय करो, इन चीजों में ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत तुम्हें नहीं है। पति से भी ऐसी बात करनी चाहिए कि ये बातें तो जीवन में आती रहती हैं, स्ट्रांग बनना है आपको, मुस्कुरा के हर बात को समाप्त कर दो, इजी नेचर बना लो तो सब चीज इजीली चली जाएगी। इस तरह बीच बीच में जब उनका अच्छा मूड देखें तो उनसे थोड़ी बात भी करें और उनको उमंग भी दिलाएं, मोटिवेट भी करें कि कोई नहीं, ये बात है ना समाप्त हो जाएगी, कोई नहीं, सबके सामने आते हैं, कोई हमारे सामने थोड़ा ही आई है, हम सब आपके साथ हैं, आपको घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे शब्दों से उनको हल्का भी करना चाहिए, मोटिवेट भी करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कोई बहुत बड़े नहीं हैं। दोनों ही यदि अभी समझ जाएंगे तो पूरा जीवन सुखों में व्यतीत करेंगे।
मतलब ना तो खुद इरिटेट हो, बल्कि योग के माध्यम से और बात करके इसे ठीक किया जा सकता है। अदरवाइज होता यह है बेटा जी कि सामने वाली यदि बार बार इरिटेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उनका प्रभाव खुद के ऊपर भी आ जाता है, और 10 बार यदि वो करते हैं तो 1 बार इनकी तरफ से भी गुस्से भरा व्यवहार हो ही जाता है,
और फिर घर में वातावरण एकदम प्रदूषित हो जाता है। घर में जो खुशी का माहौल हो, प्रेम का माहौल हो, वो समाप्त हो जाता है, और इसका बहुत गहरा इफेक्ट होगा बच्चे पर, क्योंकि बच्चा अभी विकासशील एज में है और उसका ब्रेन अभी डेवलप होना चाहिए बहुत अच्छी तरह। लेकिन जहाँ क्रोध होता है, जहाँ इरिटेशन होता है, जहाँ प्रेशर होता है, वहाँ बच्चों का बौद्धिक विकास भी रुक जाता है, और कहीं ना कहीं उसके शरीर पर भी इसका इफेक्ट आएगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में बच्चों का भोजन अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं होता है, उनका हेल्दी माइंड नहीं रहता है, तो शरीर भी वीक पड़ने लगता है। इसलिए माँ को चाहिए और बाप को भी अब चाहिए कि दोनों समझदारी से इस समस्या में बहुत लाइट और एक हैप्पी माहौल घर में बनाने का संकल्प करें।
जी जी पता जी, ये दूसरा हमारे पास जो SMS आया है, नाम तो नहीं है, ये कहते हैं कि ओम शांति भाई जी, मेरा सवाल ये है कि अगर योग करने से हमारा विकर्म विनाश होता है, हम कितने घंटे और कितने दिनों तक योग करेंगे तो हमारे पिछले जन्मों के भी विकर्म विनाश हो जाएंगे और हमारा ये जो जीवन है वो बहुत सहज और सरल हो जाएगा, विघ्नों से मुक्त हो जाएगा।
बिल्कुल, योग से विकर्म विनाश ही होते हैं, क्योंकि योग एक अग्नि है, और ये जो विकर्म है मनुष्य के, ये आत्मा के साथ साथ ब्रेन में भी प्रिंट होते हैं
जी।
तो जब हम ऑलमाइटी से योग युक्त होते हैं तो उसकी पावरफुल एनर्जी आत्मा में आती है, वो फैलती है ब्रेन में, और जो निगेटिव प्रिंट्स हैं, जो बैड एनर्जी है, उसको नष्ट करती है। तो इस जन्म के भी और पूर्व जन्मों के भी विकर्म योग से विनाश होंगे ही। रही बात कितना योग करें और कितना दिन करें, देखिए 4 घंटे योग अभ्यास रोज अवश्य होना चाहिए, उसमें योग बहुत पावरफुल बिल्कुल एकाग्रता के साथ हो। और ये कहना तो उचित नहीं होगा कि 2 साल करो या 4 साल करो, क्योंकि किसके विकर्म कितने ज्यादा हैं और किस तरह के हैं उस पे डिपेंड करेगा। इसलिए एक लंबा समय योग अभ्यास करने का लक्ष्य बना लेना चाहिए, क्योंकि योग अभ्यास न केवल विकर्म विनाश करने के लिए होता है, लेकिन ये परमात्म मिलन का सुख भी अनुभव कराता है। इसलिए जितना ज्यादा करेंगे, ज्यादा करने को मन करेगा, क्योंकि उसमें मनुष्य को अतींद्रिय सुख भासने लगता है।
बिल्कुल, मतलब कोई समय या फिर किसी प्रकार के वर्ष निर्धारित नहीं किया जाता,
क्योंकि हम रोज एनर्जी खर्च कर रहे हैं और ये शरीर एक मशीनरी है, ये एक फैक्ट्री है, इसमें रॉ मटेरियल भी जाना चाहिए, उसका ब्लड बनेगा और बहुत सारी चीजें ऊर्जा मिलेगी। तो ऐसे ही योग भी एक बहुत सुखद फीलिंग देता है, उसको लंबा समय करते ही रहना होगा। उसका सुख ही ये संदेश देगा कि सदा करते रहो।
और वैसे भी कई बार आप एग्जांपल देते हैं ब्रदर जी की, जैसे मोबाइल है, इसे भी हमें रोज चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, तो शायद आत्मा को भी रोज मेडिटेशन के द्वारा चार्ज करने की आवश्यकता है ही है। ब्रदर जी, अगला जो हमारे पास एसएमएस है वो है ओम शांति, ये कहते हैं कि आई एम डॉक्टर अनीता फ्रॉम दिल्ली। आई एम रिसेंटली डायग्नोस्ड अ केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। आई हैव अंडरगॉन सर्जरी। नाउ आई हैव टू टेक कीमियोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। आई हैव अटैच्ड टू ब्रह्म कुमारी सेंटर सिंस लास्ट वन ईयर। काइंडली एडवाइज मी योग फॉर माई मोरल बूस्ट एंड राइट प्रेयर टू गॉड।
ऐसे ही केस है कैंसर आदि के, इसमें मनुष्य मेंटली काफी वीक पड़ जाता है, तो पहले मैं इन डॉक्टर को कहूंगा कि मेंटली वो बिल्कुल स्ट्रांग रखे अपने को इस संकल्प के साथ कि अगर कैंसर आया है तो वो अवश्य चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि इनक्योरेबल है और मैं तो मर जाऊंगी, मैं क्या करूं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक होता है। ये तो स्वयं डॉक्टर है, इसलिए अच्छी ट्रीटमेंट लेनी है कीमोथेरेपी और दवाइयों के साथ। आत्मा से भी बहुत गुड वाइब्रेशंस पूरे बॉडी को जाने चाहिए, विशेषकर ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट को बहुत अच्छे वाइब्रेशन जानी चाहिए। तो देखिए, प्योर एनर्जी इज द बेस्ट हीलिंग एनर्जी। इनको एक तो ये अभ्यास करना होगा, मैं आत्मा हूं यहाँ परम पवित्र, क्योंकि एक साल से इन्होंने राजयोग सीखा है, तो मुझसे प्योर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, व्हाइट, वो मेरे ब्रेन को जा रहे हैं। पहले 10-20 सेकंड ब्रेन को जाता हुआ देखें, फिर वो मेरे पूरे बॉडी में फैल रहे हैं, छाती में जा रहे हैं। ऐसा अभ्यास करे और संकल्प करे, जो भी नाम देते हैं इसके कीटाणुओं को, उनको नष्ट कर रहे हैं। एक ये अभ्यास 5 बार जरूर कर लें, 3-3 मिनट,
मतलब मुझे आत्मा से ब्रेन में जा रहे हैं और फिर मेरे
पूरे शरीर में और छाती में फैल रहे हैं। 3-3 मिनट कर लें, 5 बार अवश्य करें। और पानी चार्ज करके पीना है। पानी चार्ज करके जो पिया जाता है वो सचमुच बहुत सुंदर मेडिसिन है। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आज तक निकले हैं। पानी को दृष्टि दें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये 7 बार याद करें, फिर पानी पिए, ये भी दवाई बन जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग जो हम सिखाते हैं वो इन्हें अवश्य करना है। रात को जब हमें नींद आने को होती है तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, और रात के समय हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा हीलिंग पावर है। हम उसे एक कमांड देंगे, उसको एक प्रोग्राम देंगे, सोने से पहले 5 बार सच्चे मन से संकल्प कर लें, मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया है, मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये प्रोग्रामिंग हो रही है, तो सबकॉन्शियस माइंड सारी रात कैंसर को हील करेगा। तीसरी विधि है, और रेस्ट में तो ये होंगी, 1 घंटा पावरफुल योग अभ्यास भी निकल लेना है। योग की एनर्जी भी देह को बहुत मदद करेगी, लेकिन योग से वो विकर्म भी विनाश हो जाएंगे जिसके कारण ये परिस्थिति बनी है। मेडिसिन के साथ ये मेडिटेशन का प्रयोग भी बहुत ज्यादा जल्दी इनको सफलता प्रदान करेगा, और हमारी शुभ भावनाएं हैं कि इनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ये फिर से अपना नॉर्मल हैप्पी और प्रोफेशनल लाइफ जिएंगे।
जी जी, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल वैसे भी सुनने में आते हैं ब्रदर जी, जिनको इस प्रकार से कैंसर किया गया था, बताया गया था कि कैंसर है और बिल्कुल अच्छे होकर के आज नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं।
हमारे पास आते हैं लोग, मैं पूछता हूँ, अभी एक बुजुर्ग व्यक्ति, आयु भी उसकी 75 हो गई होगी, कई साल उसको कैंसर रहा, मेरे को अभी मिला, मैं वहाँ गया था, मैंने पूछा आपकी तबीयत, कि मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो एक बहुत अच्छी ये बात है, और ये होपफुल चीजें हैं जो मनुष्य को होप दिलाती हैं कि कैंसर हो या कोई बीमारी हो, मनुष्य यदि बहुत अच्छी मनोस्थिति में रहे, और ठीक ठीक उसको दवाइयां मिल जाएं तो हर बीमारी ठीक हो जाती है और इनकी भी अवश्य ठीक हो जाएगी।
बिल्कुल, मतलब इसको हवा बनाने की जरूरत नहीं है ना, तो कैंसर नाम सुनते ही व्यक्ति आधा तो इसी प्रकार से घबरा जाता है कि पता नहीं अब क्या होगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो ठीक होकर के बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि अनीता जी भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगी। दादा जी, अगला SMS हमारे पास लता जी ने भेजा है, कहती ओम शांति सूर्य भाई जी, मेरा नाम लता है और मेरी आंखें बहुत कमजोर हैं, क्या योग से मैं अपनी कमजोर आंखों को ठीक कर सकती हूँ? बहुत सारे लोगों की आंखों में ऐसी तकलीफ रहती है,
ये भी समस्या बढ़ती जा रही है। पीछे जो नर्व्स जोड़े हुए हैं आंखों को, सारा जो सिस्टम है वो भी कईयों की वीक हो जाती है। इसमें भी जैसे कैंसर के रोग में हमने चार बातों की चर्चा की, वैसे ही आंखों की इस बीमारी में भी वही चार बातों का अभ्यास करेंगे, लेकिन उसमें एक प्लस करेंगे कि हाथों से प्योर एनर्जी आंखों को देंगे। हाथ मलते हुए 2-3 बार याद करेंगे मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो हाथों से प्योर एनर्जी निकलने लगेगी। इसको आंखों पे रख देंगे ऐसे 1 मिनट के लिए
जी,
और फील करेंगे कि प्योर एनर्जी आंखों को जा रही है, आंखों को बिल्कुल ठीक कर रही, स्ट्रॉन्ग कर रही है। और वैसे ही मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये शक्तियों की लाल किरणें ब्रेन में फैल रही हैं और जो ये नर्व्स हैं इनको स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। इसकी आंखें बहुत वीक हैं, उसकी नर्व्स आंखों को जोड़ने वाली वो कमजोर हो जाती हैं, तो शक्तियों के वाइब्रेशंस देंगे और संकल्प करेंगे इससे वो नर्व्स बहुत पावरफुल हो रही हैं। और रात को सोते वक्त 5 बार संकल्प करना है कि मेरी आंखें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, उसकी नेत्र ज्योति बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, परफेक्ट हो गई है। प्रोग्रामिंग देंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रात के समय, और 1 घंटा योग। अगर इनको आंख खोल के योग करना भारी लगता हो, क्योंकि जिनकी आंखें वीक होती हैं उनको थोड़ी ऐसी कठिनाई आती है, तो कुछ समय ये आंख बंद करके करें फिर खोल के करें। जिस तरह भी ये अपने को रिलैक्स फील करें, चाहे आधा घंटा सवेरे आधा घंटा शाम को कर लें, अलग अलग टाइम पे कर लें, और आत्मा से प्योर एनर्जी भी आंखों को दें। एक तो शक्तियों की बात हमने की कि शक्तियों की लाल किरणें आंखों को जा रही जो नर्व्स को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, दूसरा प्योर एनर्जी भी दें, मैं आत्मा परम पवित्र हूं, मुझसे प्योर एनर्जी आंखों को जा रही जो आंखों की ज्योति को बढ़ा रही है। तो इस तरह के अभ्यास करने से इनको बहुत सुंदर परिणाम प्राप्त होगा, और हमारी रेस्ट भावना है, विश्वास है हमें कि इनकी आंखें बिल्कुल ठीक होंगी। इन आंखों से ये भगवान को देखें, इन आंखों से ये भगवान के महावाक्य देखें, उन्हें पढ़ें, और ये आंखें संसार को सुख देने के काम आए, यही हमारी शुभकामना है।
जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया व्रता जी, समाधान कार्यक्रम लगातार सब तक अपनी शुभकामनाएं पहुंचाता रहता है, और आपकी भी बहुत सारी जो शुभकामनाएं हैं सब तक पहुंचती हैं और अच्छे अच्छे रिजल्ट तो हमें मिल ही रहे हैं। आज भी जो सुंदर चर्चा हुई है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया व्रता जी। मित्रों, लगातार हमारी बातें हो रही हैं कि यदि समस्या है तो निश्चित रूप से एक समाधान तो होता ही है, और जैसे शुरुआत मैंने की थी बात की कि कैसे संघर्ष या परिस्थितियां जीवन को बहुत शक्तिशाली बना देता है, ऐसा नहीं होता कि पूरे जीवन हम संघर्ष में जी रहे हों। बहुत कम ऐसा होता है कि संघर्ष आते हैं, परिस्थितियां आती हैं और वो कहीं ना कहीं हमें ऊपर नीचे करती हैं, शायद इसलिए कि हम थोड़े से उलझ गए हैं कहीं, या हम अपनी शक्तियों से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि कई बार ये हमारी शक्तियों को बहुत जागृत कर देते हैं। मुझे एक घटना याद आती है कि भुज के एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट जो कम्प्लीटली पैरालाइज था, लेटा हुआ था। अब 2001 की बात है, आपको याद होगा 26 जनवरी 2001, जब बहुत जोरदार भूकंप आया था। वो कम्प्लीटली पैरालाइज्ड व्यक्ति जिसकी खाट पे ही देखरेख की जाती थी, अब उस दिन कोई उसकी ओर देख ही नहीं रहा था। जब भूकंप आया तो सब अपनी अपनी जान बचा के भागे जा रहे थे। ये व्यक्ति जो कई समय से, लंबे समय से पैरालाइज था, बेड पे पड़ा हुआ था, जब उसने देखा कि कोई मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है, तो उसने भी हिम्मत की, उसके भी हाथ पैर में कंपन हुए, वो भी बिस्तर से उठा और भागना शुरू कर दिया। आज भी वो व्यक्ति जीवित है, सुरक्षित है। कहने का भाव, हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं लेकिन शायद सोई हुई हैं। जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जैसे भूकंप वाली परिस्थिति में एक पैरालाइज्ड व्यक्ति उठ के भाग खड़ा हुआ, पूरी तरह से ठीक हो गया, जीवित हो गया, वैसे ही कई बार परिस्थितियां हमारी अंदर की शक्तियों को जगा देती हैं। इसलिए परिस्थितियों में घबराएं नहीं, मन को शांत रखें, संयमित रखें और पूरी तरह से ईश्वर पर विश्वास रखते हुए मेडिटेशन का अभ्यास करें, तो आपको भी ऐसे अनुभव होंगे कि आपकी भी शक्तियां जागृत हो गई हैं। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि जीवन मखमली हो, आनंदित हो और यदि परिस्थितियां आए तो उन्हें भी आप सहज रूप से पार करते हुए अपनी शक्तियों को जागृत करें। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, अपनी समकरणी के पावन जल से।